أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیت اللہ حسن زادہ عاملی حافظہ اللہ، خدا ان کو لمبی عمر دے، علیل بھی ہیں اور خدا ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. وہ ایک دفعہ فرماتے ہیں، البتہ یہ واقعہ ان کے شاگردوں سے نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بچے کھیل رہے تھے. اب آیت اللہ حسن زادہ عاملی خود ایک لطیف شخصیت ہے، بہت ہی اب جس کو کہتے ہیں نا پیاری شخصیت ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ملائم کی ایک یعنی احساس ہوتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اس شخصیت کو کبھی غصہ نہیں آتا ہے. اور واقعاً آیت اللہ حسن زادہ عاملی ایسے ہی ہیں، کبھی بھی غصہ نہیں آتا اور بہت ہی لطیف اور پیاری شخصیت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ، تو بچے بھی کھیل رہے تھے، تو اچانک مجھے غصہ آ گیا صحیح، اور میں نے ڈانٹا ان کو اور سکولڈ کیا بچوں کو میں نے. تو جب یہ ہو گیا تو مجھے بعد میں بہت ہی پشیمانی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کام کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آیت اللہ علامہ طباطبائی رحمتہ اللہ علیہ، کے جن کا نام ہم نے کئی دفعہ لیا ہے ان لیکچرز کے اندر اور جن کی المیزان تفسیر سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ان کے بھائی جن کا نام ہے آیت اللہ حسن الہی طباطبائی، جو کہ ناشناختہ شخصیت ہے، ان نون شخصیت ہے ہمارے لیے، اور جو ایک بہت بڑے عارف انسان کامل، صاحب مکاشفہ، صاحب مشاہدہ، عالم شہود میں زندگی گزارنے والے شخصیت، یہ علامہ حسن زادہ عاملی جاتے ہیں ان کے پاس اور تاکہ اور ان سے شیئر کریں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں نے بچوں کو ڈانٹا ہے اور میں اس وقت بہت ہی اداس ہوں اور ڈس اپوائنٹڈ ہوں میں. یہ جاتے ہیں ٹریول، یعنی ایک دوسرے شہر میں ہوتے ہیں آیت اللہ حسن الہی طباطبائی اور علامہ حسن زادہ عاملی، شاید قم سے جاتے ہیں اس شہر میں ان سے ملنے، جاتے ہیں ان کے گھر میں. اور جب یہ واقعہ عرض کرتے ہیں ان کی خدمت میں، تو علامہ حسن الہی طباطبائی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ یہ سمجھے کہ استاد عرفا ہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی استاد عرفا، جو اس وقت فوت ہو چکے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، یہ فرماتے کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ مجھ سے فرمایا کہ علامہ حسن زادہ عاملی سے کہو کہ اس طرح امام زمانہ کا ساتھ دیتے ہیں، اس طرح امام زمانہ کی تم نصرت کرو گے، تم سے اپنا غصہ ہی نہیں سنبھالا جاتا. آپ دیکھیں علامہ آیت اللہ قاضی طباطبائی وہ شخصیت ہیں جو برزخ میں بھی عالم دنیا میں بعض افراد سے ارتباط رکھتے ہیں، برزخ سے، یہ یعنی اس قدر ان کی وہ آپ کہتے ہیں نا پہنچ ہے اس شخصیت کی. تو دیکھیں ہمیں اب یہاں پر علامہ حسن زادہ عاملی کو شدید احساس ہوا، اور واقعاً یہ ایسی شخصیت نہیں کہ جن کو غصہ آئے اور فوراً بچوں کو ڈانٹے، نہیں، بچوں سے پیار کرنے والی شخصیت. نارمل ہم جو ہوتے ہیں وہ فوراً، چونکہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا تو ہم فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن علامہ حسن زادہ عاملی کو آیت اللہ قاضی طباطبائی برزخ سے آ کر علامہ حسن الہی طباطبائی کے خواب میں آ کر فرما دیں کہ علامہ حسن زادہ سے کہو کہ اس طرح امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو ہمیں اپنے ایکشنز اور اپنے اعمال پر کنٹرول کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر، تدبر، غور و فکر کے ساتھ. جس طرح حدیث معروف ہے امام علی علیہ السلام کی، انگلش میں بہت پیارا لگتا ہے جب انگلش میں اس کو کہ تھنک بیفور یو اسپیک، صحیح ہے، بولنے سے پہلے سوچو، یعنی عمل کرنے سے پہلے سوچے انسان، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال سے امام زمان علیہ السلام کو ناراضی اور ناراض کر رہے ہوں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے ہمیں کہ ہم اس ماہ رمضان پر یہ کنٹرول سیکھ لیں. انشاءاللہ بات پہنچی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست خداوند متعال سے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ شیطان نے یہ ڈیمانڈز کی ہیں, یہ درخواستیں کی ہیں خداوند تبارک و تعالی سے, تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب سلطتہ علی ولدی, خدایا تو نے اسے یعنی شیطان کو میرے فرزندوں پر مسلط کر دیا ہے. وہ اجریتہ مجرا الدم فی العروق, اور اسے ہماری یا میرے بچوں کی انسان بلکہ آپ کہیں انسان انسان کے خون کی رگوں میں اسے جاری کر دیا ہے. وہ اعطیتہ ما اعطیتہ, اور جو ہے تو اسے عطا کرنا چاہتا تھا تو نے اسے عطا کر دیا. فمالی ولی ولدی, خدایا میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے تا قیامت کیا تو نے رکھا ہے. اب یہاں پر خداوند متعال نے, اور یہ کل بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہ جو سٹائل ہے, جو ادب ہے, جو گفتگو کرنے کا انداز ہے حضرت آدم علیہ السلام کا, کہ فما لی ولی ولدی, میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کیا ہے خدایا, تو ہمیں کیا عطا کرے گا. یعنی حضرت آدم نے خداوند متعال کے کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ تو خدایا تو اپنے کرم سے مجھے دے. یہاں پر میں کل یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ چونکہ ٹائم ختم ہو چکا تھا, تو وہ بات اب یہاں میں کروں گا. وہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے کرم پر چھوڑ دیا, دیکھیں ہم جب اپنے اعمال انجام دیتے ہیں, عمل صالح انجام دیتے ہیں, مثلا صدقہ, صحیح, ہر کوئی صدقہ دیتا ہے, الحمدللہ صدقے کا رواج ہماری فیملیز میں, ہمارے کمیونٹی میں اور ہمارے کلچر میں موجود ہے, روزانہ صدقہ دیتے ہیں, الحمدللہ اس کے بہت اثرات ہیں. لیکن ایک پرابلم ہے. وہ کیا پرابلم ہے؟ وہ یہ کہ ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو ایک لمٹ سیٹ کرتے ہیں. کیا مطلب لمٹ سیٹ کرتے ہیں؟ اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں یا فارسی میں کہتے ہیں حد لگانا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم حد باندھتے ہیں, ہم لمٹ سیٹ کرتے ہیں. وہ کیا لمٹ ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً 50 روپے صدقہ دینا ہے اور یہ لمٹ ہے, نہیں, مطلب یہ نہیں ہو رہا ہے. مطلب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو نیتیں ہوتی ہیں صدقہ دیتے وقت, وہ کیا نیت ہوتی ہے؟ خدایا میں 50 روپے دے رہا ہوں تو اس کو ڈبل کر دے, خدایا میں 50 روپے دے رہا ہوں تو مجھے 100 روپے واپس کر کے لوٹا. کیونکہ احادیث میں کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو خدا اس صدقے کے اثر میں انسان کو واپس لوٹاتا ہے. اب کتنا واپس لوٹاتا ہے, یہ جو کتنا واپس لوٹاتا ہے خداوند متعال, یہاں پر ہم لمٹ سیٹ کرتے ہیں جو کہ غلط کام ہے. مثلا خدایا میں 50 روپے دے رہا ہوں تو مجھے 100 واپس کر, یہ حد باندھنا غلط ہے. اگر ہم 100 روپے کی نیت کریں خدایا مجھے 100 روپے واپس ہے, تو خدا 100 سے زیادہ نہیں دے گا. بات یہ ہے اصل میں. لیکن اگر ہم حد نہ باندھیں, لمٹ سیٹ نہ کریں, خدایا میں 50 روپے دے رہا ہوں تو اپنے قدم سے مجھے واپس لوٹا, تو یہاں پر خدا انلمیٹڈ آپ کو واپس لوٹائے گا. اور خدا کا کرم آپ جانتے ہیں, خدا کریم, خدا کے کرم میں کوئی لمٹ نہیں ہے انسان کے لیے. خدا جب اپنے کرم کے مطابق دے گا تو وہ اپنے کرم کے اوج کے مطابق دے گا. خدا کا کرم, خدا کا کریم ہونا ہمارا کریم ہونے کی طرح نہیں ہے. ہم جب کریم ہوتے تو بہت بہت یعنی کچھ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کسی کو دے دیتے ہیں چیریٹی کی خاطر, اس میں بھی لمٹ ہوتی ہے. صحیح ہے, کورونا کے ایام میں خدا سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے, لیکن جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں انہی ایام میں, بہت سارے لوگ الحمدللہ مدد کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی برکات کا باعث بنے گا انشاءاللہ, یہی مدد کرنا لوگوں کا. لیکن جب آپ دیکھیں مدد کی جاتی ہے اس میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. صحیح ہے, مثلا کسی نے چیریٹی کی اپیل کی ہے تو آپ نے یا میں نے فار ایگزامپل 10,000 روپے دیے, सही है, अगरचे मेरी जायदाद में मुमकिन है बहुत बड़ी अमाउंट हो, सही है मेरे बैंक बैलेंस में, लेकिन 10,000 रुपये निकाल देते यार, कोई मसला नहीं है। अब ये 10,000 लिमिट है। अब आया मैं करीम नहीं हूं, मैं करीम हूं लेकिन 10,000 की हद तक हूं मैं। लेकिन खुदाया, खुदावंद मुतआल आया, उसकी करम जो है, उसका करम फकत इसी हद तक है, नहीं उसका करम बे इंतहा है। बस हम जब सदका देते हैं, सही है, तो हमें खुदा के कदम पर छोड़ना चाहिए, हम यहां पर लिमिट सेट ना करें। इसी तरह हर अमले हसना में, सही है, अब मेरे जहन में और अमले हसना की मिसालें नहीं है, लेकिन सदका जो एक कॉमन अमल है जो अंजाम पाता है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आपकी खिदमत में पेश की। आप इसी को जो है वो दीगर अमाल जो आपके जहन में आ रहे हैं, जो आप रोजाना अंजाम देते हैं, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, कि हम लिमिट सेट ना करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि खुदा करीम है, बस इसी वजह से फरमाया फमा अली वाले वल्दी, बस मेरे लिए और मेरी वुल्द और मेरे बच्चों के लिए खुदाया तूने क्या अता करने का इरादा किया है। तो आप देखें, खुदा वंद मुताल ने फरमाया लका वले वुल्दिक सय्यअतु बिवाहिदतिन, इसको इस तरह पढ़ूं तो बेहतर है, लका वले वुल्दिका, तेरे लिए और तेरे फर्जंदों के लिए, असय्यअतु बिवाहिदतिन वल हसनतु बिअशरति अमसालिहा, यानी जब इंसान बुरा काम अंजाम देता है, बदी अंजाम देता है, गुनाह अंजाम देता है, तो उसका गुनाह फकत एक मरतबा लिखा जाएगा, लेकिन अगर इंसान एक हसना अंजाम दे तो उसके नतीजे में 10 हसनात लिखे जाएंगे। अगर मैंने और आपने किसी को चैरिटी दी है एक मरतबा, तो मेरे और आपके नामाए आमाल में, यानी अगर मैं, ऐसा ना हो कि, ऐसा नहीं है कि मैं अगर चैरिटी अंजाम देना तो आपके नहीं, ऐसा नहीं है, अगरचे आमाल के आसार में, इफेक्ट्स में ये बयान हुआ था, सही है, लेकिन एक मिसाल है फर्ज कि अगर आप चैरिटी अंजाम दे रहे हैं तो नामाए आमाल में 10 चैरिटी लिखी जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ 10 नामाए यानी किताबत की हद तक नहीं है। इसको कल हमने बात शुरू की थी कि ये फकत किताबत की हद तक नहीं है, बल्कि ये असर है और असर वजूदी है। सही है, इस इस्तिलाह से आप खौफ ना खाएं, ठीक है, अब इसी को बात करें, और ये बात कल हुई थी कि ये जो खुदावंद मुताल ने फरमाया है लका वले वल्दिका अस्सय्यअतु बिवाहिदतिन वल हसनतु बिअशरति अमसालिहा, ये इंसान के स्ट्रक्चर ऑफ वजूद, साख्तारे वजूदी के अंदर ये रखा गया है, ये एक सिस्टम है खुदावंद मुताल का, सिर्फ नामाए अमल में किताबत नहीं है, बल्कि सिस्टम रखा गया है खुदावंद मुताल ने, इसको हमारे वजूद में एक निजाम, एक मंजूमा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस की हद तक हमें हमारे अंदर रखा है, तो हम इसको सिस्टम के अंदाज में, वो सिस्टम क्या था आपके सामने कल पेश किया था, वो ये था कि आमाल हसना या हसना, हसना को फिलहाल सिंगुलर लेते हैं, मुफरद, हसना जो है ये इंसान के वजूद के साथ मुलाइम है, इंसान के वजूद के साथ साजगार है, इंसान के वजूद के साथ क्या है, मुताबिकत रखता है, यानी इंसान आमाले हसना की जानिब फौरन मेल्ट हो जाता है, फौरन अट्रैक्ट हो जाता है, उसको सोचना नहीं पड़ता उसे अंजाम देने के लिए। सही, मैंने आपको पानी की भी मिसाल दे दी, वो मिसाल जहन में लेकर आए दोबारा, कि जब इंसान पानी में फ्लो करता है, स्विमिंग करने जाता है, तो पानी जब एक फ्लो में होता है और इंसान उसी फ्लो के साथ स्विमिंग करता है और तैरने की कोशिश करता है, जब एक कदम, एक हाथ पांव मारता है, तो वो पानी का जरियान और फ्लो बाइस बनता है, उसकी स्पीड बाइस बनती है कि इंसान एक कदम से 10 कदम आगे ऑटोमेटिक उसके बढ़ जाते हैं, ये पानी के फ्लो का नतीजा है। क्यों? क्योंकि इंसान उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरह पानी जा रहा है। लेकिन अगर इंसान पानी के, अब ये फ्लो है, इंसान मुखालिफ समत और डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहां पर उसको जहमत और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सही है, ये सय्यिआ की मिसाल है, ये बुरे आमाल की मिसाल है, जब इंसान बुरे आमाल अंजाम देता है तो ये उसके वजूद के साथ साजगार नहीं है, अपने वजूद के साथ मुताबिकत नहीं रखता है। ये कल हमने बात की थी, मैंने सोचा एक खुलासा और मुख्तसर से आपके सामने पेश कर दूं ये बात। इसी तरह एक हसना अमल, एक सालिहा अमल ना फकत इंसान के वजूद के साथ साजगार और मुलायम और मुताबिकत होता है, मुताबिकत रखता है, बल्कि इस पूरे निजाम हस्ती के साथ मुताबिकत रखता है। सही है, इसी वजह से जब इंसान एक अमल हसना अंजाम देता है तो पूरा आलम हस्ती खुशहाल होता है और पूरा आलम हस्ती उसकी इमदाद करता है, उसकी हेल्प करता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसको हम छोटा ना लें। सही, ये दीनी तालीमात में, अहादीस की तालीमात में, मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम में, हमारे उलमा और मुफस्सिरीन के कलाम में ये बातें मौजूद हैं। अब चूंकि मैं और आप, शायद मेरा गुमान है कि हम इन बातों को पहली दफा सुन रहे हैं, तो इस पर यकीन करना आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, पूरा आलम हस्ती इंसान की इमदाद के लिए आता है जब वो अमल हसना अंजाम देता है। सही, और जब सैया अंजाम देता है तो ये सैया और गुना को अंजाम देना ये ऐसा ही है जैसे पानी के अंदर, जरियान के अंदर मुखालिफ सम्त में जाना है। पूरे निजाम हस्ती के ये अमल खिलाफ होगा। ये निजाम हस्ती रिएक्शन दिखाएगा, यहां पर नाराहत होगा, उदास हो जाएगा। सही, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा ये पूरा आलम हस्ती उस एक गुनाह की वजह से। खूब, ये कल बात हुई थी। ठीक है, देखें खुदावंद मुतआल ने इस आलम को, इस दुनिया को, दुनिया ना कहे, दुनिया जब जहन में आता है तो हमें ये सिर्फ ये अर्थ हमें जहन में आती है, नजर आती है। नहीं, हम आलम, आलम यानी अवालिम, आलम मिसाल, आलम बरजख, आलम कयामत, आलम मलकूत, जबरूत, और उसमें से एक ये छोटा सा आलम जिसमें हम जिंदगी गुजारते हैं, यानी आलम अर्व, आलम दुनिया। खुदावंद ने इन तमाम, इस पूरे आलम हस्ती को, कुरान में भी आया, हक की बिना पर खल्क किया है, हक की बुनियाद पर खल्क किया है। ये आलम हस्ती दर हकीकत खुदावंद मुताल के इरादे की तरफ, इरादे की जहत में और डायरेक्शन में हरकत कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? दोबारा, ये आलम हस्ती खुदावंद मुताल के इरादे की जानिब, इरादे के डायरेक्शन में हरकत में मशगूल है। बस अगर ऐसा है और पिछली बातों को जहन में लाएं, तो आप मुझे बताएं, अगर इंसान एक गुनाह अंजाम दे और ये गुनाह पूरे आलम के खिलाफ हो, पूरे आलम हस्ती के खिलाफ हो, उस डायरेक्शन के खिलाफ हो जिस डायरेक्शन में खुदावंद मुताल का इरादा है, बस आप बताएं, अब ये एक गुनाह अंजाम देना कितना वहशतनाक होगा, आलम में क्या, अब इसको फारसी में कहते हैं गौगा, गौगा यानी आलम में क्या मारका ईजाद कर रहा होगा। सही है, आलम के अंदर क्या हलचल मच रही होगी इस एक गुनाह की वजह से, इस एक गुनाह की वजह से क्या जलजला आलम हस्ती में बर्पा हो रहा होगा, हमें नहीं मालूम है। एक अमल की वजह से, एक बुरे अमल की वजह से तमाम आलम की कैलकुलेशंस, आप सोचें खुदा ना खासा नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव कैलकुलेशंस की सूरत में ना हरकत ना कर रही हो। सही है, तो आप देखें इसी वजह से हम कहते हैं इंसान के अहमाल के असरात हैं, दुनिया में भी, बरजख में भी, आखिरत में भी, और जो वाकयात और हवादिस पेश आते हैं इनके अंदर भी। ऐ काश हम गफलत से बाहर आ जाएं, ऐ काश हम गफलत से बाहर आ जाएं। हम समझते हैं कि तौबा सिर्फ गुनाहों से होती है, नहीं, तौबा गफलत से भी होती है। अगर हम इन मतालिब के जरिए, हमारे अंदर 1% भी, 1% भी अवेकनिंग और बेदारी आ रही है, तो यहां पर तौबे का मकाम है, यहां पर तौबा होनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, और माह रमजान बेहतरीन महीना है इस काम के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए। अब एक और पॉइंट, इससे पहले हम आगे बढ़े, ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो ये कि आप देखें, अब ये सारी बातें जो आपकी खिदमत में अर्ज की, हसना उसके असरात, عالم ہستی کے ساتھ اس کی ملائمت صحیح ہے، اور سیئہ اور اس کے اثرات عالم ہستی کے خلاف مطابقت نہ ہونا۔ دو نگاہیں موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ اب اسی حسنہ سے ہم نتیجہ لے رہے ہیں اور اسی سیئہ سے ہم نجات سوری کیا لے رہے ہیں نتیجہ لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ الہی نگاہ میں، الہی ویو پوائنٹ میں، الہی عینک میں اصل نجات کے اوپر ہے۔ اصل کس کے اوپر ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھے قاعدہ، قاعدہ کیا ہے؟ نجات کے اوپر ہے۔ خداوند متعال نے اس طرح عالم ہستی کو بنایا ہے، اس کے قواعد کو بنائے ہیں اور اس کی کیلکولیشنز کو خداوند متعال نے بنایا ہے کہ یہ تمام کیلکولیشنز عالم ہستی کی کس کے ارادے کے مطابق ہے؟ خداوند متعال کے ارادے، چونکہ خداوند متعال کے ارادے کے مطابق ہے، بس قاعدہ نجات کے اوپر ہے۔ کس کی نجات کے اوپر؟ انسان کی نجات کے اوپر ہے۔ یہ الہی نگاہ ہے۔ شیطانی نگاہ بھی موجود ہے۔ شیطانی نگاہ کیا ہے؟ کہ اصل اور قاعدہ گمراہی کے اوپر ہے، صحیح ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور پوائنٹ عجیب ہے، خدا کی رحمت آپ دیکھیں کس قدر واسع اور وسیع ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان، ایک مسلمان کی مثال ہے، ٹھیک ہے، جب ایک مسلمان گناہ انجام دیتا ہے اور گناہوں کو تکرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھیں، ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، اس کی بہترین جاب ہے اور آپ سمجھیں 2 لاکھ پاکستانی روپے وہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، انشورنس ہے، میڈیکل سب کچھ، ایوری تھنگ، اس کو گھر بھی دیا گیا ہے بینک کی طرف سے، اس کے حالات بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، صحیح ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں اور بہت ہی ہنسی کھلتی فیملی ہے، گھومنے جاتے ہیں، سال میں ایک دفعہ زیارات کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، ایک سال میں فار ایگزامپل مری چلے گئے اور گھومنے چلے گئے، پہاڑی علاقوں میں چلے گئے اور سب کچھ بہترین لائف، صحیح ہے، جس کو آپ اور میں بہترین اور آئیڈیل لائف سمجھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ گزار ہے۔ لیکن یہی شخص جو جاب کر رہا ہے اور دا ہیڈ آف دا فیملی ہے، یہ ایک گناہ میں بھی مشغول ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے سب کچھ احکام خداوند کو بھی انجام دے رہا ہے، لیکن گناہ میں بھی مشغول ہے، اور چونکہ گناہ میں مشغول ہے، مسلسل گناہوں میں مشغول ہے، یہ اس قدر گناہوں کے اندر یعنی مشغول اور بزی ہے، اس کے سب کانشیس میں یہ بیٹھ چکا ہے شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے کہ یہ گناہ گناہ نہیں ہے، تم اس کو جاری رکھو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب خدا کی رحمت کا تقاضا آپ دیکھیں، چونکہ قاعدہ یہ ہے خداوند متعال کا کہ اصل نجات پر ہے، ایک یہ قاعدہ، دوسرا جو قاعدہ ہے وہ دوسرا قاعدہ نہیں ہے، وہ بنیادی قاعدہ ہے۔ وہ بنیادی قاعدہ کیا ہے؟ وہ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اصل رحمت کے اوپر ہے، سبقت رحمت بر غضب، خدا کی رحمت ہمیشہ سبقت لیتی ہے غضب پر۔ خدا کے ارادے کا تقاضا یہ کہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اپنی رحمت کو بجا لائے، اپنی رحمت کے قاعدے کو بجا لائے۔ یہ جو قاعدہ ہے سبقت رحمت بر غضب، اس کے نتیجے میں یہ قاعدہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا ہے کہ اصل بر نجات ہے، قاعدہ نجات کے اوپر ہے۔ اب چونکہ ایسا ہے، رحمت خدا اس کے غضب کے اوپر زیادہ حاوی ہے، اب یہ زیادہ یہ جو تعبیر ہے یہ ہماری تعبیریں ہیں، صحیح ہے، وہاں پر عالم خدا کے اندر اس طرح کی تعبیریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، الفاظ کے اندر اسیر ہیں اور یہ الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں، تو یہ زیادہ کم کے جو الفاظ نکلتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرے بالآخر۔ چونکہ رحمت خدا سبقت رکھتی ہے اس کے غضب پر، تو خداوند متعال، اب آپ دیکھیں کس طرح خداوند متعال اس شخص کے اوپر اور اس کی فیملی کے اوپر رحمان و رحیم ہے، کیسے؟ جب یہ شخص گناہوں میں مشغول ہے، ٹھیک ہے، اس کی فیملی بہترین ہے، عبادات انجام دے رہی ہے، سب کچھ، لیکن یہ شخص گناہوں میں مشغول ہے، ٹھیک ہے، خداوند متعال فوراً اس کے گناہوں کا، اس کے گناہوں کے بدلے میں سزا نہیں دے گا۔ خدا یہاں پر ایک سنت کو بجا لاتا ہے، وہ کون سی سنت ہے خدا کی؟ وہ ہے مہلت دینا۔ खुदा हमेशा मोहलत देता है इंसान को, ये खुदा की सुन्नत है, उसकी रहमत की वजह से। ये शख्स जो गुनाहों के अंदर मशगूल है, 1 साल 2 साल 3 साल गुनाहों में मशगूल है, लेकिन कोई सजा नहीं है खुदावंद मुताल की तरफ से। उसकी फैमिली लाइफ, उसकी फाइनेंशियल लाइफ, उसकी सिले रहमी, सब कुछ अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि नहीं, यहां पर खुदा जो मोहलत देता है उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। नतीजे में ये शख्स कैंसर का मरीज हो जाता है, या इसकी वाइफ मौत का शिकार हो जाती है, या इसके बच्चे बीमारी में मशगूल है। ठीक है, देखिए ये मुख्तलिफ जो मुश्किलात अब इसको महसूस हो रही हैं, सही है, या ये फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो जाएगा, या इसके बच्चे बीमार हो जाएंगे, या इसका बच्चा फौत हो जाएगा, या इसकी वाइफ फौत हो जाएगी, या बीमारी का शिकार हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी इसकी लाइफ लाइफ में। क्यों? अब मोहलत का टाइम तमाम शुद, खलास। देखें, खुदा ने 5 साल इंतजार किया, 6 साल खुदावंद मुताल ने वेट किया कि ये शख्स शायद इस्तगफार कर ले, शायद वापस लौट आए, लेकिन नहीं लौट आया ये शख्स। नतीजे में खुदा ने इसकी फैमिली में मुश्किलात खड़ी करना शुरू की। और ये मुश्किलात भी क्यों हैं? इंतकाम की वजह से नहीं, ये मुश्किलात भी खुदा की रहमत का नतीजा है। ये मुश्किलात भी इसी वजह से खुदावंद मुताल चाहते कि ये निजात पा जाए। अगर इन मुश्किलात के बाद इसने तौबा कर ली तो इसकी फैमिली और इसके अपने हालात, जो अच्छे हालात है, मुस्बत पॉजिटिव हालात है, ये वापस आ जाएंगे, ये वापस लौट आएंगे, इसके हालात ठीक हो जाएंगे। खुदा चाहता है मेरा बंदा मेरे पास वापस आए। इस वजह से कहते हैं खुदाया, खुदावंद मुताल माँ से ज्यादा मेहरबान है, माँ से ज्यादा रहीम और रऊफ और करीम है। बस हम कोशिश करें ये निगाह अपने अंदर ईजाद करें और इसके मुताबिक अपने 24 आवर्स और अपने आमाल को तंजीम और प्रोग्राम करने की कोशिश करें। अच्छा, यहां पर अब एक और पॉइंट आता है, यहां पर एक अजीब, एक नया आलम, एक नई यूनिवर्स इंसान के सामने खुलती है। मैंने आपके सामने कहा आलम मलकूत, आलम जबरूत, तो ये सारी चीजें, एक और आलम मौजूद है। सही है, हम इसी बहस में हैं, सही है, वी आर इन दिस टॉपिक, हम बहस से साइड अवे नहीं हो रहे हम। वो क्या है? वो ये है कि वो आलम बताएं कौन सा है। एक हदीस आपके सामने मैं पेश करता हूं, वो आप खुद डिसाइड करें, वो गेस करें वो क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद وعجل فرجهم। نبی اکرم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اعمال نیات اور نیتوں کے تو فعل ہے، نیتوں کے بدلے پر ہے، نیتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے اعمال۔ صحیح، یہاں پر ایک عالم ہمارے سامنے کھلتا ہے، وہ ہے عالم نیات، नियतों का आलम, जो कि इस कदर वसी और लामहदूद आलम है। बाज़ औक़ात इंसान एक हसना अंजाम देना चाहता है, मसलन अरबईन पे जाना चाहता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलों पे जाना चाहता है। एक शख्स का मैं वाकया आपको सुना दूं, बहुत ही खूबसूरत वाकया है। एक शख्स था, यहीं पर ये ईरान का ये वाकया है। वो वाकया ये कि ये शख्स बेचारा हर साल नियत करता था कि मैं जाऊंगा चहलों पर, अरबईन पर, करबला। तैयारी, जब भी अरबईन का मौका आता था ये तैयारी करता था, रेडी होता था, ठीक है, अपना बैग पैक करता था और बॉर्डर पर आ जाता था, यानी ईरान और इराक का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर पर ये आ जाता था। लेकिन इस बॉर्डर को क्रॉस करने के काबिल नहीं था, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर कमजोर था। हर साल ये तकरार होता था, एवरी ईयर ही यूज टू कम, हर साल वो आता था और बॉर्डर पे आता था और जायरीन से कहता था कि मेरा सलाम इमाम हुसैन तक पहुंचाना, और ये कहकर बॉर्डर से वापस अपने शहर, अपने घर पे आ जाता था। एक साल ऐसा हुआ कि ये आया बॉर्डर पर और एक शख्स उसको वहां पर मिला बॉर्डर पर। उस बॉर्डर पर वहां पर उस शख्स को कहा कि तुम जा रहे हो हुसैन इब्ने अली की जियारत के लिए, एक काम मेरा करना, वो काम क्या है, वो काम ये कि मेरा सलाम इमाम हुसैन का पहुंचाना। अब आप देखें होता क्या है, ये शख्स जो जाहिर है, जो जाता है वहां पर जियारत के लिए, हरम में जाता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस शख्स का सलाम पहुंचाता है। उसी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस शख्स के ख्वाब में आते हैं। किस शख्स के ख्वाब में आते हैं, यानी ये शख्स जिसने सलाम पहुंचाया है, ठीक है, सही। अब वो ख्वाब में आते हैं, अब नहीं पता, अब मैं आपको बताऊंगा वो क्या कहते हैं। अब ये शख्स आता है ख्वाब देख, ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखता है और फिर वापस आता है बॉर्डर पर, जब वापस जियारत करके बॉर्डर पर, ये शख्स वहीं पर मिलता है उसको, इत्तेफाकन ये शख्स वहीं पर मिलता है। वो शख्स इसको कहता है कि इमाम हुसैन ने आपको सलाम दिया है और ये कहा कि तुम्हारी जियारत कबूल हो चुकी है। देखें ये है नीयत का कमाल, ये है द पावर ऑफ नीयत, ये है आलम नियात, कि जब इंसान एक हसना, एक अच्छा अमल, नेक अमल अंजाम देने की ख्वाहिश रखता है और नियत करता है। नियत से मुराद ये नहीं है कि मैं 10 साल बाद एक मस्जिद बनाऊंगा, सही है, और 10 साल बाद आ जाते हैं लेकिन कोई हरकत इस शख्स की तरफ से नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती है, सही है। अगर मैं कोई नियत अंजाम दूं किसी काम की, यानी मैं उस काम के लिए कोशिश करने में मसरूफ हूं, लेकिन वो काम अंजाम पाने में अनसक्सेसफुल और नाकाम हो जाता हूं। नियत का मतलब इंसान हरकत में आए, ठीक है, कोशिश करे। जिस तरह मैंने आपको इस शख्स की मिसाल दी, ज़ाहिर अबा अब्दुल्ला अलैहि सलाम की, खूब। अब जब इंसान एक नियत अंजाम देता है कि मुझे फलां काम करना है, फलां नेक काम करना है, और ये काम, कोई रुकावट आ गई, कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई फाइनेंशियल रुकावट है, कोई कंडीशंस और हैं जिसकी वजह से वो काम अंजाम नहीं पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू डू हिज वर्क, खुदावंद मुताल ने ये आलम नियात का निजाम ऐसे बनाया है कि ये काम और ये अमल उसके नामे अमल में लिखा जाएगा और उसके असरात भी मुतरतब होंगे इसकी जिंदगी में। अगरचे इसने ये अमल अंजाम नहीं दिया, लेकिन उसकी नीयत बजा लाई है, उसका इंटेंशन उसने किया है और सीरियस नीयत की है, सीरियस इंटेंशन किया है। तो नतीजे में आप देखिए बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई किताब लिखनी है, ठीक है, लेकिन कुछ मुश्किल हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किताब लिख ली है, एक किताब लिखी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने टाइप कर ली है और पीडीएफ इसकी सब कुछ बना दी है, पब्लिश करने में रुकावट है, मेरे पास फंड्स नहीं है, मसलन फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पब्लिश मैं नहीं कर पा रहा हूं और बिलाखिर मेरी मौत भी हो जाती है, ठीक है, नामे अमल में मेरा ये अमल लिखा मुझे नजर आएगा। खुदा कहेगा तूने कोशिश तो की, सही है, तूने किताब टाइप तो की अपने लैपटॉप में, अगरचे पब्लिश नहीं हुई है, सही है। तो देखिए खुदा का ये बेहतरीन निजाम है, इसी वजह से अहादीस में मिलता है कि अमल की वुसअत, अमल का वाइड होना, सही है, अमल की वुसअत और उसकी तंगी ये उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। आप देखें जो जैसी आपकी और मेरी नीयत होगी वैसे ही मेरे अमल की वुसअत भी बनेगी। यहां पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अन्नियतो अफजलो मिनल अमल, कि नियत अमल से अफजल है, बढ़तर है। अब आप देखें अगली इबादत, इमाम बेहतरीन इबादत खूबसूरत बयान फरमाते कि अला खबरदार, आगाह हो जाओ, वह इन्नियत ही अल अमल, और नियत वही अमल है। बस अमल जो मैं और आप अपने फिजिकल मूवमेंट से, फिजिकल हाथ और पांव से अंजाम देते हैं, अमल ये नहीं है, बल्कि अमल किया है इमाम सादिक फरमा रहे अलैहिस्सलाम कि अमल वो नियत है जो मैं अंजाम दे रहा हूं। ये फिजिकल जो है मूवमेंट उस अमल, अमल दरूनी या उस नियत का नतीजा है, ठीक है, ये उसका आउटपुट है, अमल वही नियत है बस। फिर इमाम फरमाते हैं, अब इमाम ने एक आयत की यहां पर तिलावत फरमाई, वो आयत ये है, कुल ए नबी कह दो, कुल या अमल अला शाकिलते, हर अमल उसके फ्रेमवर्क और उसके चारचूब और उसकी शक्लो सूरत के मुताबिक अंजाम पाएगा। दोबारा सुने, कुल्लुन या अमल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, हर अमल का एक शाकिला है, एक शक्ल है, एक सूरत है। फिर इमाम फरमाते हैं, यानी इमाम फरमाते हैं इस शाकिला की क्या मुराद है? फरमाते हैं यानी अला नियतिही, यानी उसका उसकी नियत, अमल की नियत। बस अमल नियत है। वकाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी अकरम फरमाते हैं कि इन्नमा युबअसुन्नासु अला नियातिहिम, लोगों को मबऊस किया जाएगा। कहाँ मबऊस किया जाएगा? कयामत के दिन लोगों को मबऊस किया जाएगा, यानी दोबारा उठाया जाएगा कयामत के दिन। आला नियत है उनकी नियतों के ऊपर। देखिए बस आलम नियत, ये वो तोहफा है जो खुदावंद मुताल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आलम नियत का तोहफा, आलम यानी आमाल, निजाम आमाल का तोहफा, और उसके जो असरात हैं, ठीक है, ये इबलीस और शैतान के खिलाफ मुकाबला करने के लिए काफी है। लेकिन 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 हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब देखें क्या फरमाते हैं, रब जिदनी। सही है, वहां पर शैतान ने कहा था या रब जिदनी, खुदाया तू अपनी तरफ से मुझे दे। यहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं या रब जिदनी, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, जिदनी। खुदा वंदे मुताल फरमाते हैं, अत्तौबतु मबसूततुन इलाहीन यबलुगु नफ्सुल हुलकूम। अब यहां पर खुदावंद मुताल ने क्या इनायत की है इंसान के ऊपर, क्या रहमत नाजिल की है, क्या नेमत दी है इंसान के ऊपर। देखें खुदावंद मुताल ने यहां पर अब एक और सिस्टम ऑफ वजूद इंसान के अंदर रखा है। वो क्या सिस्टम? सिस्टम ऑफ तौबा। तौबा सिस्टम के तौर पर खुदावंद मुताल ने हजरत आदम और हम सब के अंदर रखा है, साख्तार वजूदी के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ वजूदी के अंदर। बस तौबा कोई छोटी चीज नहीं है। हम तौबा के ऊपर उम्मीद है इंशाल्लाह 2 या 3 सेशंस आइंदा करने वाले हैं इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इसकी मिसाल दे दूं और हम इस सेशन को यहां पर एंड करेंगे। तौबा की मिसाल क्या है? देखिए खुदावंद मुताल ने इंसान के दो निजाम बनाए, दो निजाम। वो क्या है? एक निजाम है बदनी, बदनी बॉडीली निजाम, और दो निजाम है रूही, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी का निजाम, सोल का निजाम। बदन के अंदर जो मुख्तलिफ, एक तो निजाम बदनी कुल्ली तौर पर है, लेकिन इस निजाम बदनी के अंदर बहुत सारे सिस्टम कार फरमाए, छोटे छोटे बड़े बड़े सिस्टम्स चल रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमें मालूम भी नहीं है। उसमें से एक सिस्टम क्या है? इंसान की बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम, निजाम दिफाई, जिसको फारसी और अरबिक में कहते हैं निजाम दिफाई, डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। जब इंसान की बॉडी के अंदर एक माइक्रोब, एक बैक्टीरिया वारिद होता है, वुरूद पैदा करता है, दाखिल होता है, एंटर होता है, मैं ये वुरूद, दाखिल, एंटर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुमकिन है कोई ऐसा सुनने वाला हो जिसको शायद वुरूद समझ में ना आए, शायद उसको वारिद समझ में ना आए, तो इस वजह से मैं मुख्तलिफ ताबीरात इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, ये टाइम जाया नहीं है। अगर एक माइक्रोब इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाए, एंटर हो जाए, तो यहां पर इंसान के निजाम दिफाई, इंसान के डिफेंसिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फौरन अलर्ट हो जाता है कि कोई हमारे वजूद के अंदर दाखिल हुआ है, सही, और फौरन अमल में आ जाता है, फ़ालियत में आ जाता है, ठीक है। अगर ये माइक्रोब छोटा मोटा हुआ, यानी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो ज्यादा लड़ने और जंग करने की जरूरत नहीं है इस माइक्रोब से, इस डिफेंसिव सिस्टम को, तो फौरन होगा क्या, उस माइक्रोब को हलाक कर देगा। सही है, इसी तरह खुदावंद मुताल ने हमारे निजाम रूही के अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम रखा है। अगर अब देखें उस डिफेंसिव सिस्टम का नाम क्या है, आप बताएं, तौबा। तौबा हमारे रूही निजाम का डिफेंसिव सिस्टम का नाम है। जब इंसान गुनाह अंजाम देता है, और गुनाह का ये माइक्रोब इंसान के रूह के अंदर वारिद होता है तो नतीजे में हमारे रूही निजाम के अंदर एक अलर्टनेस, एक अलार्म बजने लगता है, फायर अलार्म बजने लगता है, ठीक है। और नतीजे में इंसान के अंदर एक चीज पैदा होती है, वो क्या है? निदामत, पशेमानी। इंसान फौरन, देखें, एक इंसान जब इंसान सबसे पहली दफा जिंदगी में सबसे पहली दफा गुनाह अंजाम देता है तो उसकी हालत बुरी हो जाती है। आप यूं समझे, अगर उसको हम स्ट्रीट लैंग्वेज में कहें, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। यानी गुनाह, मैंने गुनाह अंजाम दिया है, मैंने झूठ कैसे बोला, मेरे अंदर जुरअत कैसा कैसी पैदा हुई, किस तरह मेरे अंदर ये हिम्मत हुई कि मैं अपने माँ बाप के सामने झूठ बोलूं, अपने बड़े भाई के सामने झूठ बोलूं, मैं अपनी वाइफ के मुकाबले में, अपने हस्बैंड के सामने मैं झूठ बोलूं। देखिए, पहली दफा जब इंसान झूठ कहता है या कोई और गुनाह अंजाम देता है, फौरन उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, ये असरात है उसकी बॉडी के अंदर जो मुतरतब होते हैं। सही है। तो पशेमानी होना, निदामत होना, ये इंसान के वजूद का हिस्सा खुदा ने रखा है। ये उसके तौबा के सिस्टम का पहला अक्सुल अमल है कि इंसान पशेमान होता है। बस ये फिलहाल हम इसको यहीं रोकते हैं। हम इंशाल्लाह निजाम दिफाई रूही के बारे में इंशाल्लाह मुफस्सल बात करेंगे आफ्टर 2 और 3 सेशन इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम ये काम करेंगे, अब ये हजरत आदम की एक और डिमांड बाकी है इंशाल्लाह, वो हम कल बात करेंगे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। और कुछ और बातें और मतालिब शैतान के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। खुदावंद मुताल से दुआए, खुदाया हमें अपने सिस्टम ऑफ वजूद को समझने की तौफीक अता फरमा, और इसका जो है वो शाकिर होने की तौफीक अता फरमा, और इसको इस्तेमाल में खुदाया हमें लाने की तौफीक अता फरमा, और आखिर में शैतान को शिकस्त देने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
صل على محمد وآله.